ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आगामी सप्ताह होने वाला तुर्कमेनिस्तान का भ्रमण कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत। एक महीने से मारतरी कोल्टी सड़क अवरुद्ध होने के कारण स्थानीय को आने जाने में हो रही है दिक्कत। राष्ट्रीय गौरव के परियोजना के निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित निकाय को गंभीर होने की बात पर सांसदों ने दिया जोर। और चीन के राजधानी बेजिंग के बाहरी इलाके में स्थित एक सिंह होम में बाढ़ आने से 31 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नागरिक के सुरक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवारी पूर्वक काम कर रही है। आज मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय को सार्वजनिक करने के लिए मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में तराई के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 500 डीप बोरिंग करने का सरकार सिर्फ बात ही कर रही है के संबंध में संचारकर्मी के एक जिज्ञासा पर संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि सूखा क्षेत्र में तत्काल सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए डीप बोरिंग करने के निर्णय को सरकार जिम्मेवारी पूर्वक नागरिक के समस्या समाधान के लिए बढ़ाए कदम को अनावश्यक चर्चा में आने के लिए राजनीतिक स्टंटबाजी करने वालों का नकारात्मक टिप्पणी है। संचार मंत्री गुरुंग ने सरकार तराई के सूखा क्षेत्र को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करके जल्द से जल्द समस्या के समाधान के लिए काम आगे बढ़ाई है। इसी तरह श्रावण 12 गते के मंत्रिपरिषद बैठक के बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंदुली सड़क को आपातकालीन पुनर्स्थापना के लिए जापान सरकार से प्राप्त होने वाली 2.8 अरब जापानी एन अनुदान सहायता और रानी जमरा कुलरिया सिंचाई परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय किवास संस्था के से प्राप्त होने वाले 18.92 अरब रुपया सहूलियत ऋण सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सत्ता सहभागी दो प्रमुख दलों नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच आज विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में उन लोगों के बीच विचार विमर्श में समसामयिक विषय पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री एवं एमाले के अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा, कांग्रेस के उप सभापति पूर्ण बहादुर खड़का, एमाले के उपाध्यक्ष तथा उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल, गृहमंत्री एवं कांग्रेस के नेता रमेश लेखक, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार एवं एमाले के उप महासचिव विष्णु प्रसाद रीमा लगायत सहभागी थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश के अन्न भंडार के रूप में रहे तराई मधेश में सिंचाई के उचित प्रबंध करने के लिए सरकार जुट चुकी है। आज नेकपा एमाले के साहित्य कला तथा संस्कृति विभाग द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने इस साल तराई मधेश में खड़ेरी के कारण अच्छा से खेतीपाती नहीं हो पाने के परिस्थिति सृजना होने का जिक्र करते हुए कहा कि सिंचाई और पेयजल का उचित प्रबंध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सुनकोसी मरीन डायवर्सन, रानी जमरा कुलरिया, तमोर लगायत के परियोजना जल्द पूरा करने के लिए संबंधित निकाय को निर्देश किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हिम्मत नहीं हारने और भविष्य प्रति आश्वासन युवा उद्यमियों ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करने में योगदान देंगे। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री के साथ स्टार्टअप उद्यमी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भविष्य को परित्याग करने से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, इसलिए विकसित देश के सुंदर भविष्य प्रति आशावादी होकर हम लोग कर सकते हैं के भावना के साथ जुटना होगा। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति ने मध्य प्रदेश में दिख रहे पेयजल अभाव को तत्काल समाधान करने के लिए सरकार को निर्देश किया है। आज समिति की सिंह दरबार में हुई बैठक से मध्य प्रदेश लगायत देश के विभिन्न भाग में रहे पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए अध्ययन करके प्रतिवेदन बुझाने के लिए सांसद उर्मिला अर्याल की संयोजकत्व में 5 सदस्य के समिति भी गठित किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर शाह सुरी ने संयुक्त राष्ट्र की महिला समिति शीर द्वारा नेपाल के लिए दिए गए सुझावों को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। महिला कानून एवं विकास मंच द्वारा काठमांडू में आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शीर समिति में विशेष रूप से महिलाओं के समग्र उत्थान और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शोषण और भेदभाव को समाप्त करने को विषय को लेकर उल्लेखित है। महिला तथा सामाजिक मामलों की समिति के अध्यक्ष किरण कुमार शाह ने बताया कि शीर्ष समिति के सुझावों को लागू करने के लिए उनकी समिति द्वारा बार बार चर्चा कर निर्देशन भी दिया गया है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दहाल ने थानकोट चितलांग सड़क के उन्नयन कार्य को गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज सड़क का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि काठमांडू को जोड़ने वाले इस छोटे मार्ग थानकोट चितलांग खंड को आर्थिक विकास और समृद्धि में सहायक बताया। उन्होंने कहा कि यह सड़क मकमानपुर की कृषि उपज को काठमांडू तक लाने और पर्यटन क्षेत्र के विकास में भी मदद करेगी, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। काठमांडू महानगरपालिका ने बारिश के मौसम में जल जनित संक्रमण का खतरा अधिक होने के कारण उबला हुआ पानी का ही इस्तेमाल करने के उपभोक्ताओं से अपील की है। काठमांडू कृषि तथा पशुपालन विभाग के प्रमुख नूर निधि न्यूपाने ने बताया कि जल जनित खतरों को कम करने के लिए काठमांडू ने पीने के पानी के उत्पादन, ढुलाई और वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी पानी उबालकर ही प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले महीने असार की निगरानी के दौरान 159 मानकों के विपरीत पीने के पानी से भरे जार नष्ट किए गए थे। इसके अलावा काठमांडू ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल मानसून जल्दी आ गया है और लगातार बारिश हो रही है, जिससे हैजा के मरीज बढ़ने की आशंका है। इस पर नियंत्रण के लिए काठमांडू ने तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने कहा कि मानवाधिकार आयोग सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। आज आयोजित एक कार्यक्रम में 16वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार महाभेला की रिपोर्ट और दस्तावेजों सहित जिम्मेवारी 17वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार महाभेला आयोजक समिति को सौंपते हुए अध्यक्ष मगर ने कहा कि मानवाधिकार क्षेत्र में करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है और इसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब मौसम। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह चीन की राजधानी बीजिंग की बाहरी इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम में बाढ़ आने से 31 लोगों की मौत हो गई। चीनी मीडिया के अनुसार जब बाढ़ आई तो नर्सिंग होम के अंदर लगभग 77 बुजुर्ग थे। इनमें से करीब 40 लोग फंस गए क्योंकि पानी का स्तर लगभग 6 फीट तक बढ़ गया। एक फुटेज में आपातकालीन टीमों को म्यून जिले में एक घर से लोगों को बचाने के लिए छाती तक पानी में उतरते हुए देखा गया। बाढ़ में मारे गए लोगों में से कई बुजुर्ग कथित तौर पर चलने में सक्षम नहीं थे। स्थानीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि आपातकालीन योजना में कई खामियां थी और यह दर्दनाक घटना हमारे लिए एक सबक है। बीजिंग में आई इस बाढ़ में कुल 44 लोगों की मौत हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आगामी सप्ताह होने वाला तुर्कमेनिस्तान का भ्रमण कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत। एक महीने से मारतड़ी कोल्टी सड़क अवरुद्ध होने के कारण स्थानीय को आने जाने में हो रही है दिक्कत। राष्ट्रीय गौरव के परियोजना के निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित निकाय को गंभीर होने की बात पर सांसदों ने दिया जोर। और चीन के राजधानी बीजिंग के बाहरी इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम में बाढ़ आने से 31 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।